Hare Krishna. बुधवार को हम गौण पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, जो गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके लिए पूरे वर्ष में सबसे मंगलमय दिवस है, क्योंकि ये वो दिन है जब श्री चैतन्य महाप्रभु युगावतार परम करुणा पहु द्विजन निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, ये वो अवतार का दिन है और वो दिन है जब परम करुणा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने विस्तृत रूप श्री नित्यानंद प्रभु के साथ इस भौतिक संसार में आए। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार के सार शिरोमणि, क्यों? क्योंकि इनका बताया हुआ जो मार्ग है, न केवल ये नहीं वो सर्वोच्च लक्ष्य प्रेमापुमार्थो महान, भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है इसको प्रदान करता है, बल्कि ये प्राप्त करने का जो तरीका इन्होंने दिया है केवल आनंद कंदा, बहुत ही सरल और बहुत ही सुखदायक है। तो इस दिन की तैयारी के लिए अगर तीन चार दिन पहले से थोड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा, उनके नित्य पार्षदों का उनके साथ संबंध, ये सब अगर श्रवण करेंगे श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर, तो निश्चित रूप से इस दिन का हम पूरा फायदा उठा सकते। तो इस उद्देश्य से ये आज से गुरुवार तक जगन्नाथ मिश्रा उत्सव, जैसे चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही अगला दिन नंदोत्सव मनाते, नंद महाराज ने उत्सव मनाया, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद अगले दिन जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता ने एक उत्सव मनाया, जगन्नाथ मिश्रा उत्सव। तो इस तरह से बुधवार और गुरुवार ये दो दिन तो उत्सव है ही, उसकी तैयारी के लिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज के दिन एक घंटे का कथा होगा और कल से दो घंटे का कार्यक्रम रखने का निश्चय है हमारा शाम के वक्त, ताकि हर व्यक्ति इसको इसका लाभ ले सके। आज का दिन बहुत ही मंगलमय दिवस है, खास करके ये उत्सव की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज श्री माधवेंद्रपुरी गोसाई इनका तिरुभाव दिवस है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के वृक्ष हैं, तो उनका जड़ है श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु के कोई गुरु हो ही नहीं सकते, कृष्णम मंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, जो श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति और भावना को लेकर प्रकट हुए हैं, न केवल बांटने के लिए कृष्ण प्रेम को बल्कि आस्वादन करने के लिए, पर एक आदर्श उदाहरण देने के लिए उन्होंने ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी हमारे गुरु संप्रदाय में, अगर गीता में आप देखोगे, भगवान श्री कृष्ण से लेकर श्रील प्रभुपाद जी तक 32 गुरु हुए इस गुरु परंपरा में। कृष्ण, वहां से ब्रह्मा जी, वहां से नारद जी, वहां से वेद व्यास, वहां से मध्वाचार्य पांचवें, और पांचवें के बाद 19 तक बहुत सारे आचार्य हुए, और 19वें थे श्री लक्ष्मीपति तीर्थ मध्व संप्रदाय के। पर 19वें आचार्य तक, मध्वाचार्य से लेकर, इन्होंने भगवान का ज्ञान तो दिया परंपरा में, पर माधुर्य रस इसका प्रामुख्यता उन्होंने नहीं दिया था। भगवान के बारे में मालूम था, वैकुंठ कैसे जाना है इतना मालूम था, पर माधुर्य रस ये इस संप्रदाय में प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और दूसरा इनका योगदान था भगवान के विरह भाव को स्थापित करना, सर्वोच्च स्थान, भगवान के विरह में जो प्रेम अनुभव होता है वो सर्वोच्च है, इस तत्व का भी उन्होंने प्रतिपादन किया और उसकी शुरुआत इस परंपरा में की। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के ही ये पार्षद हैं, जब कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्य महान व्यक्ति कोई आता है तो उनके सामने बहुत सारे गाड़ियां आती है, आपने देखा होगा जब बहुत बड़ा आदमी आता है उसके सामने 10-15 गाड़ी आते हैं और उसके बाद 10-15 गाड़ी आते हैं, उनके साथ साथ भी और 5-6 गाड़ी आती है। तो इसी तरह से जब भगवान अवतरित होते हैं, अवतरण होने से पहले अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने मामा चाचा, गुरु परम गुरु सबको वो पहले भेज देते हैं, उसके बाद वो आते हैं और उसके बाद उनके बहुत सारे अनुयायी आते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, नीलांबर चक्रवर्ती, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी इत्यादि, ब्रह्मानंद भारती, परमानंदपुरी इत्यादि महान भगवान के नित्य पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद अलग अलग स्थानों में अवतरण हुए और उनमें से एक थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी तत्व का, ऑफकोर्स उनको एक आधार बनाकर, श्री चैतन्य महाप्रभु ही युगावतार है, पर उसी को उन्होंने स्थापित किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के, श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय को, उसका शीर्षक ही है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति, इसकी महिमा क्या है, श्री माधवेंद्रपुरी की महिमा क्या है, क्योंकि इनको जानेंगे, इन्होंने जो बीज बोया उसका वृक्ष है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो ये अच्छा सुंदर ध्यान है। इस अध्याय के बारे में संक्षिप्त रूप से हम आज, शायद कल आधा घंटा या एक घंटा इसके ऊपर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात दूसरी कथा को प्रारंभ करेंगे। तो इसकी शुरुआत में ये सुंदर श्लोक लिखते हैं, यस्मै दातुम चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथः क्षीरचोराभिधोभूत् श्री गोपालः प्रादुरासीद् वशस्सन् यत् प्रेम्णा तम माधवेन्द्र नतोऽस्मि। मैं उन माधवेन्द्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूं जिन्हें श्री गोपीनाथ ने चुराकर खीर दी और स्वयं क्षीर चोर कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। यह शिला माधवेंद्रपुरी का प्रेम था। भगवान प्रेम के भूखे हैं और माधवेंद्रपुरी में इतनी प्रेम थी, उनके अंदर लेश मात्र कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि जब उन्होंने कुछ इच्छा की भगवान की सेवा के लिए, काश ये जो भगवान को भी भोग लग रहा है उस खीर का अगर थोड़ा मैं आस्वादन करूं तो मुझे पता लगेगा कि मेरे गोपाल को क्या भोग लगाना है। फिर सोचने लगे, छी 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 छी, मैंने क्या, वे क्या सोचा ये। पर भगवान उनके हृदय की इच्छा को जान गए, किसी को बोला नहीं माधवेंद्रपुरी, चले गए, पर भगवान ने उसे चोरी करके छिपा लिया, 12 में से एक जो मटका था उसे छिपा दिए और पुजारी को रात में बोले, देखो तुम उठा के ले गए, तुम्हें माया में डाल दिया, तुम्हें बता नहीं चला कितना था, उसमें 11 ही था, 12वां मेरे जो पर्दे के पीछे है, अब उसको ले जाओ और वो मार्केट में वहां अकेले एकांत में माधवेंद्रपुरी बैठे हुए हैं, उनको जाके खिलाओ। तब से गोपीनाथ रेमुना में जो गोपीनाथ नाम के प्रसन्न थे वो क्षीर चोरा गोपीनाथ, मतलब चोर के नाम से प्रसन्न हो गए। भगवान चोर के नाम से प्रसन्न हो गए अपनी भक्त को प्रसन्न करने के लिए। क्या नहीं करते वो भगवान, क्योंकि भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करते, अपना जीवन, अपना नाम, यश, सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार। और इसीलिए भगवान भी आदान प्रदान में उनकी इच्छाओं को, सबसे पहले भक्तों की इच्छा ही नहीं होती, कुछ भौतिक इच्छा ही नहीं होती, पर सेवा करने की थोड़ी भी कोई इच्छा हो उसको पूर्ण करने में तुरंत भगवान कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार है। क्षीर चोर माधवेंद्रपुरी के कारण गोपीनाथ जी क्षीर चोर के नाम से प्रसन्न हो गए, क्षीर भांडम, चोरयन क्षीर भांडम। और दूसरा वज्रनाभ के स्थापित किए हुए विग्रह जो म्लेच्छ के आक्रमण के कारण वो भय से उस एक पुजारी ने उन्हें एक जंगल में डाल दिया था, मिट्टी में डाल दिया था, गाड़ दिया था, कई सालों बाद जब माधवेंद्रपुरी आए तो उनकी सेवा के भूखे होने के कारण उनको प्रकट हुए सपने में और बोले मैं वहां हूं, चलो मेरे को ले आओ, स्थापित करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी राह देख रहा था कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मेरी सेवा करेगा। तो ये अध्याय में बहुत सुंदर है और मैं आपको थोड़ा बहुत बंगाली के साथ भी सुनाता हूं क्योंकि बंगाली बहुत मधुर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले एक दिन पूरी दुनिया बंगाली सीखेगी चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए, बंगाल जाने के लिए नहीं, चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए। बहुत मधुर है। तो श्री चैतन्य चरितामृत की इस अध्याय की शुरुआत करते हुए हमेशा आप देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमेशा शुरुआत करते वक्त महाप्रभु और उनके पार्षदों का गुणगान करते हुए शुरू करते हैं और अंत में श्री रूप रघुनाथ पदे रहु यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। उद्देश्य बहुत क्लियर है और किसकी कृपा से कर रहा हूं यह एकदम साफ साफ है। हर अध्याय में कोई अध्याय शुरू नहीं करते बिना गुणगान किए, महाप्रभु और उनके पार्षदों का गुणगान करते, मतलब इस ग्रंथ का एकमात्र उद्देश्य है महाप्रभु और उनके भक्तों का प्रेममय आदान प्रदान का गुणगान करना, जिसके श्रवण मात्र से हमारे अंदर भी शायद उस प्रेम का एक बूंद स्पर्श हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। और अंत में हमेशा इस श्लोक से खत्म करते हैं कि मेरी योग्यता कुछ नहीं है, यह सब रूप रघुनाथ की कृपा से है, उन्हीं की कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूं, कभी नहीं भूलते, यही उनकी महानता, इसीलिए तो वे महान है। उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना और कृतज्ञता पूर्वक उन व्यक्तियों का स्मरण करना जिनकी कृपा से वो कुछ कर पा रहे हैं। एक भक्त का प्रमुख लक्षण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, सब उनका गुणगान करते हुए फिर शुरू करते हैं। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, शची माता के कहने पर वृंदावन छोड़कर जगन्नाथपुरी आए और नीलाद्रि पर्वत पर आकर जगन्नाथपुरी में आकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उन्होंने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद फिर कहते हैं कि ये सब लीला विस्तृत रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में लिख चुके हैं, पर जो उन्होंने छोड़ दिया इधर उधर उसको मैं गुणगान कर रहा हूं, नहीं तो मेरे अंदर क्या योग्यता है, पुनरुक्ति हो जाएगी। जो ऑलरेडी वो कह चुके हैं, जो पहले से वो कह चुके हैं, उस पर फिर से लिखना अपराध होगा, वो अपराध मैं नहीं करना चाहता। तो वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में पढ़कर उनसे माफी मांगते हुए अगर पुनरुक्ति कुछ हुई तो और उन्होंने जो आस्वादन किया उसको आस्वादन करते हुए उन्होंने जो ग्रंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए इसलिए कुछ चीजों को विस्तृत नहीं कर पाए, उन चीजों को लेकर मैं विस्तृत कर रहा हूं। और ये कहते हुए फिर वो कहते हैं, वो अतएव तारपाए करि नमस्कार, तारपाए अपराध नहु को आमार, ये अपराध ना हो इसीलिए उनके चरणों में प्रणाम करके फिर ये कथा को आगे बढ़ता हूं। यही मतो महाप्रभु चलिला नीला चले, चारिभक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से निकले, नीलाचल की ओर, और उस समय उनके साथ चार भक्त थे, जगदानंद नित्यानंद दामोदर मुकुंद, जगदानंद पंडित नित्यानंद प्रभु दामोदर पंडित और मुकुंद, ये चार लोगों को लेकर निकले थे। ऑफकोर्स बाद में बोले ये चारों आप मत आना मेरे साथ क्योंकि आप बहुत चिंता मेरे बारे में करते हो, मुझे अपना नियम पालन नहीं करने देते हो। ये चारों के साथ निकले वो और इस तरह से चलते 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 रेमुना पहुंचे, रेमुना गांव में। और जैसे रेमुना पहुंचे तो सबसे पहले वो गोपीनाथ जी के पास, रेमुना में बहुत प्रसिद्ध है क्षीरचोर गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे। रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैला प्रभु तार दर्शन। रेमुना में परम मोहन दर्शन है गोपीनाथ जी का, तो गोपीनाथ जी का दर्शन किए प्रेम पूर्वक और उनका दर्शन उनको प्रणाम किया। और वहां उनको जब प्रणाम किए श्री चैतन्य महाप्रभु, गोपीनाथ जी के सर पर बहुत ही सुंदर एक चूड़ामणि था पुष्प का, वो गिरकर महाप्रभु के सर पर शोभायमान हो गया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया और नृत्य करने लगे। ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। भगवान के सामने आते हैं उनका दर्शन लेने के लिए नहीं, ताकि उनका दर्शन हम पे पड़े, और तब पड़ेगा जब हम उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, खास करके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका है, वो खुद बता रहे कैसा हम प्रसन्न होते हैं। दोनों हाथ उठाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से बोलो,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
और साथ साथ में नृत्य करना, वो बाद में करेंगे। तो जब नृत्य करते हैं तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाते, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और वो दिखा रहे हैं कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो महाप्रभु पहुंचे, चूड़ा पाया प्रभु मने आनंदित होइया, बहु नृत्य गीत कैला भक्तगण लैया। भक्तगणों को लेकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने खूब नृत्य कीर्तन किए। प्रभु रो प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित होइला गोपीनाथेर दासगण। भगवान के रूप प्रेम और गुण का देखकर बहुत प्रभावित हो गए वहां के सारे सेवक और बहुत अच्छी तरह से उनका सेवा किया। सेवा करने के बाद महाप्रभु ने निश्चय किया कि आज रात में गोपीनाथ में ही, गोपीनाथ मंदिर में ही मैं रात बिताऊंगा। क्यों? क्योंकि ईश्वरपुरी मेरे गुरु महाराज से उनके गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी के बारे में मैंने इसी जगह पर श्रवण किया, और यहां का खासियत है यहां का क्षीर भांडम, क्षीर का मटका, और वो रात को शयन दर्शन होने के बाद निकलता है। तो बोले इसीलिए उसकी इच्छा से मैं यहां ठहरूंगा। और जब ठहरने के लिए बैठे हुए थे तो अपने भक्तों को अपने परम गुरु माधवेंद्रपुरी के बारे में वो कहने लगे। पूर्वे ईश्वर पुरी तारे कहिया छे न महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु यथा, पूर्वे ईश्वर पुरी तारे कहिया छे न कथा। ईश्वरपुरी से वो जो सुने थे वो कहने लगे, वो क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्तगणे कहे प्रभु सही तो आख्यान। क्षीर चोर गोपीनाथ कैसे प्रसन्न हो गए उसका आख्यान कहते हुए भक्तगण को सुनाने लगे। पूर्वे माधवपुरी लागी क्षीर कोयला चुरी, अतएव नाम होइला क्षीर चोरा हरी। पूर्वे माधवपुरी लागी क्षील कोयला चोरी, अपने भक्त के लिए उन्होंने चोरी किया और इसीलिए क्षीर चोरा गोपीनाथ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। फिर कहते हैं, फिर माधवेंद्रपुरी की कहानी शुरू की कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते 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 पूरे भारत में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जैसे जैसे पहुंचे उनकी प्रेम बढ़ती गई, 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बढ़ती गई। और जब वो गोवर्धन पहुंचे तो कभी उठते कभी गिरते, कभी हंसते कभी रोते, कभी नाचते कभी गाते, किसी तरह वहां पहुंचे और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की। गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद जब गोविंद कुंड में आए, गोविंद कुंड में बहुत सुंदर एक वृक्ष है, उसके नीचे वो स्नान करके शाम बैठ गए आराम करने के लिए। आज भी वो जगह है, गोविंद कुंड के बगल में माधवेंद्रपुरी का बैठक, अभी भी वो जगह है, वहां बैठे थे। वो जगह बहुत प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे क्यों प्रसिद्ध है। तो स्नान करने के बाद वहां बैठे, जब बैठे थे, माधवेंद्रपुरी का एक नियम था। क्या नियम था वो? कभी वो खाने के लिए किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। कोई अगर अपने आप लाकर कुछ दिया तो वो स्वीकार करते थे, अगर कोई नहीं लाके कुछ दिया तो भूखे रहते थे, कभी एक दिन कभी एक हफ्ता। उनको इसका विचार ही नहीं था, वो हरिनाम लेते रहते थे, खाना और सोना जानते नहीं थे वो। बाई चांस कुछ थोड़ा नींद आ गया तो आ गया, नहीं तो बस। और अयाचक वृत्ति, अजगर वृत्ति बोलते, चुपचाप बैठे रहना, जो आया मुंह पे अपने आप आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हरि बोल। तो इस तरह से वहां जाके बैठ गए और हरिनाम ले रहे थे, हरिनाम लेते लेते। तो जब हरिनाम ले रहे थे, एक गोप बालक वहां से आया और हाथ में दूध का एक मटका लेके आया, मिट्टी का एक मटका, उसमें दूध लेके आया। गोपाल नामक एक दुग्ध भांड लैया आसी आगे धरी किछु, बोले ना हसिया। आया और दुग्ध भांड लेकर माधवेंद्रपुरी के सामने खड़े होकर मुस्कुरा के देखने लगा और कुछ कहने लगा। क्या कहा? पूरी यही दुग्ध लिया करो करो तुम्ही पान, मागी केनो नहीं खाओ किंवा करो ध्यान। बोले हे बाबा, ये दुग्ध लो, ये दुग्ध पान करो, तुम मांग के क्यों नहीं खाते? ये क्या ध्यान में, किस प्रकार का ध्यान है तुम्हारा, ध्यान करते बैठे रहते हो, मांग के क्यों नहीं खाते? बालक रो सौंदर्य पुरी रो होइला संतोष, तहार मधुर वाक्य गेला गेला भूख शोष। माधवेंद्रपुरी ने कई दिनों से खाया नहीं था पिया नहीं था, पर इस बालक की सौंदर्यता को देखकर, सौंदर्य को देखकर उनका भूख और प्यास मिट गया, देखते रह गए। बोले उन्हें पता नहीं क्यों, पर बहुत ही आकर्षित हो गए इस ग्वाल बाल के प्रति। बोले इतना सुंदर बालक। पूरी कहे के तुमी कहां तुमार वास, के मने जानी ले आमी करी उपवास। पूरी कहे के तुमी, अरे कौन हो तुम और कहां तुम वास करते हो बेटे, और के मने जानी ले आमी करी उपवास, अरे तुम्हें कैसा मालूम कि मैंने कुछ खाया नहीं। बालक कहे गोप आमी यही ग्रामे वसी, आमार ग्रामते के हो ना रहे उपवासी। कहते हैं बालक कहे गोप आमी, मैं तो एक गोप बालक हूं और यही ग्रामे वसी, ये गोवर्धन ग्राम में ही मैं रहता हूं और मेरे ग्राम में कोई उपवास नहीं रहता, भरपेट खाते। केहो मागी खाए अन्न केहो दुग्धाहार, अयाचक जने आमी दिए तो आहार। कोई मांग के भिक्षा करके अन्न ग्रहण करते हैं और कोई तो दुग्धाहार करते हैं, पर जो कुछ भी नहीं करता है, अयाचक है, चुपचाप बैठे रहता है, उसके लिए मैं खुद लाके देता हूं, ये मेरा काम है। जल लैते स्त्रीगुण तुम्हारे देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पठाईला। पर अब कुछ स्त्री आई थी यहां से पानी ले जाने के लिए, उन्होंने देखा बैठे हुए, उन्होंने मेरे को दूध लेके भेजा। अब ये ले लो, मुझे दूध दोहने के लिए जाना है, संध्या हो गया, राह देख रहे होंगे मेरे घर में, ये बर्तन को साफ करके रखना, मैं बाद में आके लूंगा। ये बोल के वो लड़का चला गया, गोपाल चला गया वहां से। माधवेंद्रपुरी ने दुग्धपान किया, उसे अच्छे तरह से धो के रख दिए, राह देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे, बालक आया ही नहीं। जब करते 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 पूरी रात हो गई, जैसे जैसे सुबह का प्रातःकाल होने के थोड़े समय पहले, थोड़े क्षण के लिए माधवपुरी को एक झपकी लगा, और जब वो ऐसे बाह्य सर को खोकर नींद ले रहे थे, उनको एक सपना हुआ। स्वप्ने देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लाई गेला हाते ते धरिया। सपने में वो बालक वही आया और माधवेंद्रपुरी जी का हाथ पकड़कर उसे एक झुंड, एक बहुत बड़ा वहां एक कुंज जैसा घना कुंज, उसमें ले गया। ले जाने के बाद कुंजो दिखाइया कहे आमी यही कुंजे रोई, शीत वृष्टि दवाग्निते दुख बड़ो पाई। बोले इस कुंज में मैं रहता हूं और शीत वृष्टि और दवाग्नि, कड़ी धूप, कभी ठंडी, कभी बारिश, इसमें मैं बहुत दुख पा रहा हूं, बहुत समय से यहां हूं मैं। ग्रामीण लोक आनी आमा काढ़ो कुंजो हैते, पर्वत ऊपरे लैया रखो भल मते। बोले काम करो, गांव वाले के लोगों को ले आओ और इस कुंज में से मुझे उठाओ और पर्वत के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करो अच्छी तरह से। एक मठ करी ताहा करो स्थापन, बहु शीतल जले आमा श्रीअंग मार्जन। और मेरे इस सुंदर स्वरूप को आप गोवर्धन के ऊपर स्थापन करो और शीतल जल से अच्छे तरह से मेरा मार्जन करो। बहुत समय से मैं जमीन के अंदर बैठा हुआ हूं, गर्मी हो गई है, थोड़ा स्नान कराओ अच्छा से। बहु दिनों तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। देखिए भगवान बोल रहे हैं, मैं कभी भी उठ सकता था, मैं किसी को भी सपने में आके बोल सकता था, पर क्यों मैं बैठा था? कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन, कब आकर माधवेंद्रपुरी मेरा सेवा करेगा? तुमार कबे आसी माधव आमे करीबे सेवन, तुमार प्रेमवशे। फिर कहते हैं तुमार प्रेमवशी करे सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी वो सकल संसार। तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, मुझे सेवा की जरूरत नहीं, तुम्हारे प्रेम वश में आकर मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। इतना प्रेम था माधवेंद्रपुरी के पास कि भगवान उस प्रेम से जीत गए। अजित जीतोपी, भगवान अजित है पर जीते जाते हैं भक्त के प्रेम से, और यह प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं बिना कोई योग्यता के। जो माधवेंद्रपुरी जैसे करोड़ों में एक मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यत सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम, जो मुक्त लोगों को भी उपलब्ध नहीं था, ऐसा प्रेम को हमें प्रवेश दे रहे हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। पर ये प्रेम जिससे भगवान कहते हैं तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि। मैं तुम्हारे पत्ते फूल जल का भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, और तुम्हारे पास इतना प्रेम है कि उससे मैं आकर्षित हो रहा हूं। कृष्ण सर्व आकर्षक है कि नहीं? आकर्षयति इति कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षण करते हैं, पर वो एक ही चीज से आकर्षित होते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम से। इसीलिए राधा रानी का दूसरा नाम है मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन, भगवान मदन मोहन है, उनको भी मोहिनी, उनको मोह लेती है, और वही प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किए, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, और हमें उन्होंने उस प्रेम का पाने का एक तरीका, उसमें हमें प्रवेश दिया है। नाम नाम कार्य बोधान ये सर्वशक्ति। फिर कहते हैं श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, श्री गोपाल नाम मोर, मेरा नाम श्री गोपाल है, मैं वही गोवर्धन धारी हूं। वज्रे स्थापित आमी यहा अधिकारी, वज्रनाभ के द्वारा मैं स्थापित हुआ हूं, मैं यहां जगह का अधिकारी मैं ही हूं। शैल उपरे होते आमा कुंजे लुकाइया, म्लेच्छ भय सेवक आमार गिला पालाइया, म्लेच्छ भय के राजन के डर के मारे उसने मुझे इस कुंज में डाल दिया और वो यहां से चला गया और तब से मैं वहां लेटा हूं। सही होते रही आमी यही कुंज स्थाने, तब से मैं इस कुंज में हूं। भालो होइला आइला आमा काढ़ सावधाने, अच्छा हो गया तुम आ गए, अभी प्रेम से निकालो मुझे और स्थापित करो। और इस तरह से वो अंतर्धान हो गए। माधवेंद्रपुरी जागे और रोने लगे, बेहोश होकर गिरने लगे, कितना मूर्ख हूं मैं, मेरे इष्ट देव मेरे सामने प्रकट हुए थे, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो बहुत बुरा लगा उनको। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्षणे करोदन करी मन कैला धीर, आज्ञार पालन त्याग लागी होइला सुस्थिर। पहले बहुत दुख हुआ, रोने लगे, फिर उन्होंने अपने आप को धीर किया, अपने मन को बोले आज्ञा मिला है, पहले उसको पालन करो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी हमको आनंद चाहिए भक्ति में, उस आनंद के चक्कर में जो आज्ञा का पालन है वो भूल जाते हैं। दारुक एक बार भगवान श्री कृष्ण को चामर डोला रहा था, भगवान का सेवक है, उसकी आंखों में इतना दिव्य आनंद के आंसू वाष्प आने लगे, इतना कि दिख भी नहीं रहते भगवान ठीक से, तो अपने आंसुओं को कोसता है, बोले नहीं चाहिए ऐसे आंसू मेरे को जो मेरी सेवा से बाधा करती है मुझे। तो वो सेवा में जो आनंद है, क्योंकि ये जो आनंद है वो अपने इंद्र तृप्ति नहीं हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे, अच्छा तो बहुत चीजें लगती है, पर भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना, ये भक्ति है। हमको जो अच्छा लगता है नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो भले वो उनको दुख हो रहा था, पर वो दुख को बगल में रखे, बोले अभी आज्ञा ऑलरेडी मिला है। तुरंत सुबह उठे, गांव में गए, गांव वासियों को बुलाए और बोले देखो कुल्हाड़ी को सब लेके आओ, कुल्हाड़ी सब लेके आओ, इस घने जंगल के अंदर तुम्हारे गोवर्धनधारी हैं इधर। तो सब गए, झाड़ियों को काटा, किसी तरह से अंदर घुसे और थोड़ी समय के बाद खोदे तो उसमें से गोपाल जी प्रकट हुए। बड़े विस्मित हो गए सब लोग, अरे अरे तो सही निकला, ये बाबा जी ने तो सही कहा एकदम। तो तुरंत उठाने की कोशिश की, कोई उठा नहीं पाया, इतने भारी थे वो। अंत में बलिष्ठ बड़े बड़े तगड़े लोगों को, जैसे पहलवान होते कोल्हापुर के, हमको पहले रथ यात्रा में पहलवान लोगों को लाए थे, लिहाजा एकदम वहां के पहलवान लोगों को बुलाए घी पीने वाले और उनको उठाए। गोपाल जी को बड़े प्रेम से लिए, गोवर्धन गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर उन्हें स्थापित किया, एक बड़ा चट्टान जो था एकदम फ्लैट उस पे स्थापित किए और दूसरा पत्थर पीछे लाके रखे सपोर्ट के लिए। और इस तरह से उन्हें अच्छे तरह से स्थापित करने के बाद गांव के सब लोग आ गए, पता चला कि गोपाल जी आए हैं, तो सब के सब ब्राह्मण लोग आ गए, सब लोग एकत्रित हो गए और किस 900 नया घड़ा ले आए और घड़े में भर भर के गोविंद कुंड का पानी लिए और उसको छान के उन्होंने शुद्ध किया, अच्छे स्वच्छ कपड़े में उसको शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद 900 घड़े में पानी लाकर गोवर्धन के ऊपर रेडी हो गए स्नान कराने के लिए। केहो गाए केहो नाचे महोत्सव होइला, अनेक सामग्री यत्न करी आना इला, सब लोग इधर उधर से जाके ले आए। दधि दुग्ध घृत आईला यत ग्राम होते, भोग सामग्री आईला संदेशा दियते। इस तरह से हर एक लोग, कोई घी, कोई दही, कोई दूध और कोई अलग अलग प्रकार के अन्य व्यंजन सब ले आए, जो जो था सब ले आए। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आईला अनेक, आपले माधवपुरी करे अभिषेक। सब लाने के बाद अभिषेक स्वयं अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी, जो भूखे थे भगवान उनके हाथों से सेवा लेने के भूखे थे, तो माधवेंद्रपुरी ने अपने हाथों से गोपाल जी का अभिषेक किया। इस तरह से बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है किस प्रकार से स्नान कराए और उसको अच्छे तरह से तेल लगाए और चमका दिए भगवान के शरीर को एकदम, क्योंकि बहुत समय से अभी चंदन लगाए, तुलसी लगाए, पुष्पमाला लगाए, धूप दीप नैवेद्य सब लगाए, अच्छी तरह से भोग लगाए, ग्रामे रजत तंडुल दाली गोधूम आदि चूर्ण सकल आनिया दिला पर्वत हैला पूर्ण। इतना सामग्री ले आए कि पर्वत का जो ऊपर का भाग पूरा भर गया। हम लोग 4000 लोग ये साल से शुरुआत में, पिछले साल कार्तिक में हम लोग गए थे और 30-30 लोगों को पूरे दिन भर सेवा लगाया था कुछ भोग बनाने के लिए, उसके साथ फ्रूट्स बहुत सारे लाए, सब कुछ भर भर के पहाड़ जैसे बनाए। तो वो पर्वत के एक जो छोटा सा ऐसा वैली है उसका एक भाग भर गया और हमको लग रहा था वाह कितना भोग लगाया। तो महाराज जी बता रहे थे ये तो कुछ नहीं है, इतना भोग लगा था ये पूरा जो ये अणियोर गांव है इधर से लेकर उधर पूरा भर गया था, जगह नहीं था पैर रखने के लिए, इतना भोग लगाया था अन्नकूट के समय में। और अन्नकूट के बाद दूसरा अन्नकूट अभी हुआ जब माधवेंद्रपुरी ने किया, पूरी तरह से भर सब लोग ले आए थे। कुंभ कार्य घरे छिला यत मृदांजन सब अला प्रात होते चढ़ीला रंधन। तो जो गांव में कुंभ जो मटकी बनाने वाले उनके पास जितना मटका था सब लोगों ने खरीद के ले आए, सब ले आए, वो खुद भी ले आए सबसे पहले। और उसके बाद सुबह सुबह ब्राह्मणों ने सुबह से शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया, फर्स्ट क्लास सब व्यंजन बना के अभिषेक भोग लगाएंगे। और अलग अलग प्रकार के, कोई दाल बना रहा था, कोई राइस बना रहा था, कोई ये बना रहा था, कोई फल मूल, अलग अलग प्रकार के व्यंजन। और पांच लोगों का काम था सिर्फ रोटी बनाने का, रोटी का पहाड़ बना दिया। तो पहले अन्न रखे और चारों ओर से रोटी लगा दी, रोटी का एकदम। और इस तरह से नव वस्त्र लाए और उस तरह से उसके ऊपर पलश, पहले वस्त्र रखे शुद्ध कपड़ा नया कपड़ा, उसके ऊपर पलश पत्र रखे और उसके ऊपर अन्न डाला, अन्न डाल के एकदम बड़ा पहाड़ बना के रख दिए। हेनोमते अन्नकूट करिया साजन पुरी गोसाई गोपाले रे कैला समर्पण। तो अन्नकूट उस समय के बाद फिर से ये फिर से महामाधवेंद्रपुरी ने उसका साजन किया और गोपाल को समर्पण किया। अनेक घट भरी दिला सुशीतल जल बहु दिनेर क्षुदाए गोपाल खाइला सकल। बहुत दिन से खाए नहीं थे गोपाल जी बेचारे, तो उन्होंने एक बार पूरा खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला तार हस्त स्पर्शे अन्न पुनताई छे हैला। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला सब कुछ खा लिए, पर तार हस्त स्पर्शे अन्न पुनताई छे हैला, पर उनके हाथों के स्पर्श के कारण फिर से वापस हो गया। अब ये किसी को समझ में नहीं आता, बोलते ये तो बहुत हो गया है। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है कि भगवान, श्रद्धा किस चीज में, भगवान की अचिंत्य शक्ति में। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नाम। जो भक्ति से अर्पण करता है उस भक्ति के कारण मैं उसे स्वीकार करता हूं, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन का भोग न खायो रूख साक विदुरगर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। आपके भोग के भूखे नहीं है, आपके प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का मतलब भोग लगाना ऑफकोर्स। तो पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, वो सब कुछ खाने के बाद पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। जितना भी खाए उतना ही रहता है, हम खाने के बाद कुछ नहीं रहता क्योंकि हम अपूर्ण हैं, पर भगवान पूर्ण है, संपूर्ण खाने के बाद भी वैसा ही रहता, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। एक प्लस एक, एक में एक जोड़ो तो भी एक, एक से एक घटाओ तो भी एक, ये आध्यात्मिक गणित है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, आंखों से भगवान खा सकते हैं। कई साल पहले एक बात फैला था कि गणपति ने दूध पिया, आप लोग मालूम होगा, तो सब लोग फोन कर रहे थे हमारे मंदिर में, आपके दरवाजे के ऊपर जो गणपति है ना उसको भी पिलाओ, हो सकता है पीसे। तो सब नीचे के क्लास, क्लास चलता है वहां, ट्यूशन क्लासेस, वो लोग भी आ गए, महाराज खिलाओ खिलाओ खिलाओ। तो हमारे एक बड़े वरिष्ठ भक्त सीढ़ी लगाए और वहां कांच था, कांच को निकाले और किसी ने जहां ऐसा ऐसा अलग अलग लाए, किसी ने दूध लाया, किसी ने गिलास लाया, किसी ने चम्मच लाया, और लिए और पिलाने लगे गणपति को। तो सब बाहर की पब्लिक सब आके खड़ी हो गई दूध पी रही क्या देखने के लिए। तो जब देख रहे थे तो वहां से हमारे महाराज जी आ गए, राधानाथ महाराज उधर से चलते आए। तो जैसे ब्रह्मचारियों ने देखा कि महाराज आ रहे हैं, सीढ़ी छोड़ा, ग्लास फेंका, सब भाग गए, सब भाग गए, क्योंकि मालूम था कि गाली पड़ने वाला है। और दुर्भाग्यवश मैं नहीं भाग पाया क्योंकि आगे पीछे लोग भरे हुए थे, तो मैं पकड़ा गया। तो महाराज मेरे को बोले इधर आओ। बोले क्या हो रहा है, उनको मालूम नहीं था क्या हो रहा। बोले क्या हो गया, कुछ गिर गया, कुछ हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं महाराज, क्या हुआ महाराज। क्या बोले, बोले गणपति को दूध पिला रहे। क्या बोले, नहीं नहीं मैं नहीं, कोई लोग पिला रहे। फिर मैंने उनको समझाया ऐसा, गणपति दूध पी रहे हैं, पूरे दुनिया पी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पी रहे हैं महाराज, सब जगह पी रहे हैं पूरे दुनिया में, तो इसीलिए हमारे भक्त तो दूध पिला रहे थे। तो महाराज हंस के चले गए। अगले दिन भागवतम क्लास में बहुत सारे कांग्रेगेशन के सब लोग आए हुए थे सुनने के लिए क्या हुआ। एक ने तो फोन किया था कि आपके गोपाल जी को भी पिलाओ क्योंकि हमारा लड्डू गोपाल भी पी रहा है दूध, ऑल्टर के ऊपर पिला के देखो क्या हो रहा है। तो बहुत फैल गया था। तो अगले दिन महाराज जी ने प्रवचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, बोले ये सब लोग, सबसे पहले उन्होंने बोला कि क्या तुमको शास्त्र में विश्वास नहीं है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यात् प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि, मैं खाता हूं। क्या तुमको विश्वास नहीं है, तुम दिन में 6 बार भोग लगाते हो, तुमको विश्वास, तुम महाप्रसाद बोल के खाते हो, तो खाया नहीं है तो क्या खाए महाप्रसाद। यानी अब तक तुमको विश्वास नहीं है कि तुम जो खा रहे हो महाप्रसाद है। फिर कांग्रीगेशन के जितने लोग बैठे थे सबको पूछे तुम्हारा बच्चा दूध पीता है कि नहीं। हाँ महाराज पीता है। तो अखबार में डालते हो क्या, मेरा बच्चा दूध पिया आज, तो कौन सा आश्चर्य बात है। तो गणपति दूध पिया तो पी भी लिया, तो कौन सी बड़ी बात है। इतने साल से तुम मोदक खिला रहे हो, वो खाने रहे थे क्या। इसका मतलब तुमको विश्वास ही नहीं है कि आज तक जो भी भोग लगाए वो खाए हो। और दूसरी बात बोले, क्यों ये लोग भोग लगा रहे हैं, क्यों भाग भाग के जा रहे हैं दूध पिलाने के लिए। प्रेम से नहीं, सिर्फ वो देखने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा गणपति ने दूध पिया, देखने बस, उनका आनंद कि मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर हर रोज दूध पीना शुरू कर दे तो क्या जाएंगे लोग, बोलेगा ठीक है पीने दो ना हमको, क्यों कोई और पिलाने दो। प्रेम से नहीं पिला रहे, सिर्फ द एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग, बस एक दिन मैंने देख लिया, बस कौन सा बड़ा काम किया देख के। तो फिर उन्होंने कहा कि उनको ये विश्वास नहीं है कि पत्थर का मूर्ति भी कुछ खाता है और पीता है, इसीलिए देखने जा रहे हैं, प्रेम से नहीं देने जा रहे। हमको चर्म चक्षु से देखना नहीं है, हमको शास्त्र चक्षु से देखना है। और शास्त्र चक्षु के द्वारा धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने के बाद प्रेम की चक्षु से देखना है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदये शुभ लोकयन्ति। जब प्रेम आएगा तो देखने की जरूरत नहीं, भगवान खुद आएंगे, हम बिना ऑफरिंग किए छीन के खाएंगे। सुदामा, उसने मंत्र नहीं पढ़ा, छिपा के रख रहा था वो, पर भगवान ने उसको छीन के खाया क्योंकि प्रेम के भूखे थे। हम लोग भोग लगाने के बाद भी पता नहीं खाए कि नहीं, क्योंकि हमको विश्वास नहीं कि भगवान खाते हैं। और सुदामा के जो ये था, टूटे फूटे भीख से मांगे हुए, बगल घर से लिए हुए जो पोहा, उसको भी भगवान ने प्रेम के कारण लिया। तो इस तरह से तार हस्त स्पर्शे अन्न पुनः ताइचे होइला, फिर से वापस प्रकट हो गया। कौन सी आश्चर्य बात है? कोई आश्चर्य बात नहीं हो, पर हमारे लिए आश्चर्य बात है जिनको विश्वास नहीं। इहा अनुभव कोइला माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लुका की छुनाई। माधवपुरी ये सब कुछ समझ पाए, दूसरे लोग नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त से कोई चीज छिपा नहीं है, वो समझ गए। एको दिन और उद्योगे आई छे महोत्सव होइला, गोपाल प्रभावे होइला अन्य ना जानिला। एक दिनेर उद्योगे आई छे महोत्सव, और ये महोत्सव कितना दिन हुआ मालूम? एक ही दिन के अंदर सुबह माधवेंद्र पुरी सब गांव के लोगों को ले गए, और दोपहर के अंदर इतना बड़ा अन्नकूट, पूरे पर्वत भरकर अन्नकूट हो गया। एको दिनेर उद्योगे आईछे महोत्सव होइला, एक दिन मतलब दोपहर के समय भोग लगाया गया, पत्थर ते मंदिर तैयार हो गया, भोग तैयार हो गया, अभिषेक की सामग्री तैयार हो गई, अभिषेक हो गया, भगवान को भोग भी लग गया, कुकिंग भी हो गया, हजारों हजारों आइटम पूरा पर्वत भर गया। गोपाल प्रभावे होइला अन्य ना जानिला, गोपाल के प्रभाव से यह हुआ, अन्य लोग नहीं जान पाए। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, बोले ये इस्कॉन संस्था ऐसे ही चल रहा है, मैं अकेला यहां से गया, मेरे पास एक पैसा नहीं था, और पांच साल के अंदर पूरे विश्व भर में इतने सारे मंदिर, इतने सारे मूर्तियां, इतने सारे भोग लग रहे हैं, कैसा लग रहा है भगवान ही जाने। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई 500 साल पहले की बात नहीं है, उसी परंपरा में आए हुए ऐसे महान आत्माओं की चमत्कार आज भी हम देख सकते हैं। एक दिन उद्योगे होइला, एक दिन के अंदर माधवेंद्र पुरी ने किया। तो इसके तात्पर्य में रूपात लिखते हैं, वी सिंपली हैव टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट, भगवान करेंगे, भगवान के लिए कोई आश्चर्य, वो तो एक दिन में कर सकते हैं क्या, एक मिनट में कर सकते हैं वो। भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि अर्जुन ये रणभूमि से होने से पहले कहता हूं कि सबके सब मारे जाएंगे, तुम पांच भाई के अलावा कोई नहीं बचने वाला, बस। पर तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो, तुम एक साधन बनो, निमित्त मात्र भव सव्य साची। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी कह दिया है, पृथ्वी ते आचत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरना, वो होगा ही, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, सिर्फ हमें एक साधन बनना है। कैसे साधन बनना है? शुद्ध होना है। जितना हमारा अहंकार है वो बाधा है एक शुद्ध साधन बनने में। भगवान हमारे द्वारा एक दिन में अद्भुत चीजें करा सकते हैं, क्या उनके लिए तकलीफ है? हमें विश्वास नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? आज भी अगर सोचेंगे 70 साल से उम्र से 82 साल के अंदर कैसा प्रभुपाद ने इतने सारे सेंटर लेकर इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया, इतने लोगों को इतना सुंदर से सेवा, मंदिर का सेवा, अभी बाद में कल पढ़ेंगे इसको, थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा 5-6 मिनट है। तो उन्होंने शैया बनाया, उसके बाद सबको खूब प्रेम पूर्वक, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको प्रेम से खिलाए, जितने लोग दूर दूर गांव से आए थे उनको सबको प्रसाद खिलाया। एक दिन के अंदर माधवेंद्र पुरी को भी कैसे मालूम कैसे हो गया? हो गया, गोपाल जी प्रकट हुए, गोपाल ने सब कराया। एक दिने उद्योगे ऐछे महोत्सव होइला, गोपाल प्रभावे होइला अन्य ना जानिला, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे कैसा हुआ। आज वही चीज करने जाओ तो समझ में आता है, एक मंदिर को संभालने में बाल पक जाते हमारे, एक भक्त बनाने के लिए थक जाते हम लोग, ये भक्त बनता ही नहीं भाई, साल साल 16 साल से बोल रहा हूं, एक माला भी शुरू नहीं किया तो 16 माला कब करेगा ये? पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे विश्व भर में फटाफट सब होते गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए। और इसके अंत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्या कमी है हमारे में, हम क्यों साधन नहीं बन सकते, और हमें साधन बनना है तो क्या करना चाहिए। भगवान कुछ भी कराने के लिए तैयार है, उत्सुक है, सेवा लेने के लिए तैयार है, पर हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बाधा है? बोले दो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। एक, वी हैव टू रिमेन सिंसियर, हमें प्रामाणिक होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, आचार्यों का जो मत है, आचार्यों का जो आज्ञा है, उस आज्ञा को अच्छी तरह से पालन करना है। बस आचार्यों ने हमें आज्ञा दिया है, उसको बड़ी प्रामाणिकता से हमको पालन करना है, और अद्भुत चीजें भगवान हमारे द्वारा कराएंगे। और कोई अद्भुत बात नहीं है, निमित्त मात्र, हमें निमित्त बनाकर भगवान क्या नहीं कर सकते, एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं, हमें विश्वास होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत सुंदर तत्व ज्ञान इसके द्वारा हमें सीखने को मिलता है। फिर कहते हैं, पुरी रव प्रभावे देखी लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न होइला साक्षात्कार। पुरी रव प्रभावे लोके होय चमत्कार, बोली आदमी क्या है, क्या इसने चमत्कार कर दिया, सुबह सुबह आया और शाम तक इतना बड़ा उत्सव, हजारों लोगों को खाना मिल गया, कैसे हो गया ये। पूर्व अन्नकूट ये न होइला साक्षात्कार, 5000 साल पहले जो साक्षात्कार हुआ उनको, ये देखने के बाद उनको विश्वास हो गया कि भगवान का जो अन्नकूट है वो हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये आदमी गोवर्धन धारी गोपाल ने फिर से अगर ये किया है, प्रकट किया है, तो 5000 साल पहले क्यों ना हुआ हो। और माधवेंद्र पुरी को और देख कर कहने लगे, क्या आदमी है, चमत्कार, क्या चमत्कार। उनको विश्वास हो गया कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संस्था को देखोगे, तो आप प्रभुपाद जी को बोलेंगे, क्या चमत्कार किया ये आदमी, एक आदमी, कई लोग सिर्फ उनके जीवन चरित्र को पढ़कर भक्त बने, फिलॉसफी बाद में समझे वो लोग, बोले एक आदमी ने किया इतने थोड़े समय में। निश्चित रूप से भगवान है, और भगवान अपने भक्तों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। सकल ब्राह्मण पुरी वैष्णव करिला सही सही सेवा मध्य सेवा नियोजिला। और जितने सारे ब्राह्मण आए थे सबको वैष्णव का दीक्षा दे दिया और उनको सेवा में लगा दी, गोपाल जी की सेवा करो। चलो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्राह्मण में और वैष्णव में अंतर क्या है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, 6 कर्म, पठन ज्ञान को पढ़ना और पाठन लोगों को सिखाना, यजन यज्ञ करना, विग्रह की सेवा करना, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना और लोगों को सिखाना कि घर में विग्रह की सेवा कैसे हो, हरिनाम यज्ञ कैसे हो, संकीर्तन यज्ञ कैसे हो, पठन पाठन यजन याजन, और क्योंकि ये दोनों में उनका पूरा जीवन चलता है तो जीवनी कैसा निभाएंगे, दान। और वो दान का भी जितना अपना जरूरत है उतना रखकर प्रतिग्रह बांटना वापस। पर इतना होने के बावजूद भी अगर वैष्णव मंत्र नहीं है, विष्णु की आराधना नहीं है, श्रम ये वही केवलम। दुर्भाग्यवश आज भारत में ऐसा हुआ है, ब्राह्मण है, शालिग्राम है, पर वो सिर्फ रीति रिवाज का पूजा हो गया है, न पठन है, न पाठन है, न यजन है, न याजन है, न दान है, न प्रतिग्रह है। तो पुरी ने, माधवेंद्र पुरी ने ऐसे ब्राह्मणों को लेकर उनको वैष्णव बनाया और गोपाल जी की सेवा में लगा दिया। पर माधवेंद्र पुरी के परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने एक कदम और बढ़ के गए, म्लेच्छ यवन लोगों को भी वैष्णव बना दिया, पहले ब्राह्मण बनाए, पहले वैष्णव बनाए, और हमें वैष्णव ब्राह्मण बनाए और विग्रह की सेवा में लगा दी। माधवेंद्र की पुरी की प्रेम से एक गोपाल जी प्रकट हुए, पर प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की प्रेम से, हजारों हजारों गोपाल पूरे विश्वभर में प्रकट हो गए। और जितने कितने लोगों को हर रोज प्रसाद मिलता है, कहां से आता है ये पैसा फिर भगवान जाने। होता है, भोग लगता है, फर्स्ट क्लास भोग लगता है, फर्स्ट क्लास वस्त्र आभूषण लगता है, फर्स्ट क्लास सेवा होता है। कैसे हो रहा है? हो रहा है। और इस तरह से सबको खूब तरह से अच्छी तरह से खिलाए और सब होने के बाद रात्रि काले ठाकुर एक कराइला शयन, पूरी गोसाई कोइला की छू गव्य भोजन। सबको खा के सब भेजने के बाद, भगवान को सुलाने के बाद, माधवेंद्रपुरी ने क्या स्वीकार किया? थोड़ा सा कुछ गव्य भोजन, मतलब गाय जो दूध का बना हुआ कुछ एक आइटम ले लिए। भगवान को और भक्तों को खिलाने में उनका आनंद था, उसी में उनका पेट भर गया। वो पेट सिर्फ ये पेट नहीं, आत्मा तृप्त हो जाता है। जब आत्मा तृप्त हो गया ऑटोमेटिकली शरीर तृप्त हो जाता है। सिर्फ पेट को भरा, आत्मा तृप्त नहीं हुआ तो और भी भूख लगता है। पर जब आत्मा तृप्त हो जाता है, और आत्मा तृप्त कब हो जाता है? जब भगवान तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कब तृप्त होते हैं? जब भक्त तृप्त हो जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी खुश थे सब जस्ट देखकर कि गोपाल जी का अच्छा सेवा हो रहा है, वैष्णव सब प्रसन्न है, हरि बोल तृप्त। अन्न घृति दधि दुग्ध ग्रामे यत छिला, गोपाल एर आगे लोको अनिया धरिला। और इतने प्रेम से हर गांव के लोगों ने माधवेंद्रपुरी के सामने प्रण लिया, कल हमारा गांव, परसों इनका गांव, नरसों उनका गांव। बोले एक एक गांव वाले लोग अन्नकूट करेंगे। इस तरह से महीनों तक हर रोज ऐसा फेस्टिवल चलता रहा। कई दिनों तक हर गांव के लोग दूर दूर, और ये जानकर के गोपाल प्रकट हुए और सारे लोग दूर दूर देश के वहां आसपास के लोग, वो लोग सब आने लगे। फिर क्या हुआ? अंत में ये इसको साथ खत्म कर देंगे। गोपाल प्रकट सुनी नाना देशे होते, नाना द्रव्य लैया लोक लागिला असीते। तो जब पता चला, गोपाल प्रकट सुनी नाना देश है थे, आसपास के जो गांव के दूसरे दूसरे राज्य हैं वहां के लोगों को पता चला, नाना द्रव्य लैया लोक लागिला आसी थे, सब द्रव्य को लेकर वो लोग भी आने लगे, हम भी गोपाल की सेवा करेंगे, हम भी उनका दर्शन करेंगे। मथुरार लोक सब बड़ो बड़ो धनी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेट धरे आनी। मथुरा के लोग बहुत धनी होते हमेशा, देखेंगे मथुरा वालों का पेट बड़ा होता है फर्स्ट क्लास। सब घी इत्यादि खाते हैं, दुकान में बैठे रहते। तो मथुरा लोक सब बड़ो बड़ो धनी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेट धरे आनी। सब लोग ले आए, क्या लाए? स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध नाना उपहार, असंख्य आईले नित्य बाड़िला भंडार। ये सब करने के बाद क्या हो गया? स्वर्ण, कोई सोना लाया, कोई चांदी लाया, कोई वस्त्र लाया, कोई गंध सुगंधित, कोई नाना उपहार लाया। असंख्य आसीले नित्य बड़ाइला भंडार, गोपाल जी का भंडार बढ़ता गया, इतने लोग आने लगे। एको महाधनी क्षत्रिय कराइला मंदिर, केहो पाको भंडार कोइला केहो तो प्राचीर। एक आदमी आया बोला मेरी ओर से मंदिर। एक वदी सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक महाधनी क्षत्रिय कराइला मंदिर, योजना नहीं बनाई कैसे मंदिर के हाथ करे, प्रेम से सेवा कर रहे थे। एक महाधनी क्षत्रिय कराइला मंदिर, बोला है मेरी ओर से मंदिर। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी सेवा कर रहे थे मदन मोहन की, एक व्यक्ति आया बोले मेरी ओर से मंदिर, कपूर